नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से याकूब की पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और जिसका मुख्य विषय है मसीही व्यवहारिक जीवन। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से उसकी निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से याकूब की पत्री नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि याकूब विश्वासियों को सांत्वना देते हुए धनवानों को झिड़क रहा है। याकूब उनके लिए भविष्यवाणी करता है कि उन पर क्लेश आने वाले थे। उस समय उनके कीमती वस्त्र, सोना चांदी, धन आदि सब व्यर्थ होगा और ऐसा ही हुआ। तीतुस रोमी ने जब यरूशलेम पर आक्रमण किया था तब वे बंदी बनाकर दासत्व में ले जाए गए थे। उनकी धन संपदा सब धरी की धरी रह गई थी। कहा जाता है कि उस समय एक भी यहूदी धनवान नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने लौने वालों की दुहाई सुनी थी। वचन में बार बार कहा गया है कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से हमने पिछले अध्ययन में धनवानों को झिड़कने के बारे में देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम सब मिलकर आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर रेडियो के साथ में बैठे हुए हैं ताकि आपके वचन को सुने, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक के जीवन में अपनी आशीष दें, उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दें ताकि आज हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, तकलीफ में हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, शांति दे ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज अपने वचन के द्वारा हम सब से बोले और बातचीत करें, हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। लिखा है, तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि संसार में एक ऐसी शक्ति है जो सरकारों का अपने स्वार्थ के निमित्त कुशल प्रयोग करती है। वह आर्थिक व्यवस्था को अपने वश में रखती है। हम प्रचार माध्यम की स्वतंत्रता के विषय में सुनते हैं, परंतु वह केवल मनुष्य को अपने विचारों में ढालने का प्रयास है। कहता है, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। धनवान और पापी बच जाते हैं। इसी बात को देखकर दाऊद परेशान था कि वे ऐसे फलते फूलते हैं जैसे निज भूमि में लगाया गया वृक्ष। मैं चूक जाऊं तो परमेश्वर मेरी ताड़ना करता है, परंतु बेबीलोन का राजा तो खूब बढ़ रहा था, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। परमेश्वर का दंड ऐसा ही है, वह उन्हें फूलने फलने देता है और जब उनका अंत भयानक होता है। धन संपत्ता ने मनुष्य को आनंद प्रदान नहीं किया है, परंतु अंत में विनाश ही आया है। मेरे प्रियो, यहां एक धनवान विश्वासी के लिए सबक है। आपका बैंक खाता कितना बड़ा है? यदि आज प्रभु यीशु आ जाए तो क्या आप उसे अपना बैंक खाता देखने देंगे? एक दिन वह आपसे लेखा लेगा, आप अपने धन का उपयोग कैसे कर रहे हैं, इसका भी आपको लेखा देना होगा। नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय के 8 पद में लिखा है, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मैं न तो धनवान हूं और न ही निर्धन, क्योंकि मैं धनवान होकर परमेश्वर को भूल जाऊंगा, और यदि निर्धन रहा तो चोरी कर सकता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं मध्यवर्गीय मनुष्य हूं। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि मसीह का आगमन शांतिदायक है। याकूब स्पष्ट करता है कि हम कैसे संसार में रहते हैं। यह एक दुष्ट संसार है जिसमें भाई भाई के खून का प्यासा है, धन के सीढ़ी पर चढ़ने वाले अन्यों की उंगलियां रौंदते हैं। क्या विश्वासियों को चुनाव में रुचि रखना है? जी हां, हमें अच्छे से अच्छा नेता चुनना चाहिए। परंतु मेरे मित्रों, हम इस संसार को बदल नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की वाणी सुने, वह अपनी संतान से क्या कहता है। आइए हम पढ़ें याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 7 पद। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। परमेश्वर के वचन में गरीबों के लिए बहुत कुछ लिखा है। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा तब गरीबों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उचित एवं न्याय संगत। संसार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। सब भविष्यद् वक्ताओं ने इसी बात पर बल दिया है। जी हाँ, यशाया की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास करें, गरीब को आज तक न्याय नहीं मिला है। यदि आप सोचते हैं कि कोई राजनीतिक दल गरीब का भला करेगा तो आपका सोचना एक भ्रम है। मैं निराशवादी नहीं हूं, परंतु आप मनुष्य से आशा नहीं कर सकते हैं। क्या आप अधिकार और धन के लोलुप मनुष्य से धार्मिकता की आशा कर सकते हैं? वे चाहे कैसे भी वादे करें, गरीबों का भला होना संभव नहीं। हमारी एकमात्र आशा प्रभु यीशु में है। यदि प्रभु यीशु में रुचि रखने वाले कोई हैं, तो वे केवल गरीब लोग हैं, क्योंकि केवल वही हैं जो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करके उनका भला करेगा। इसलिए लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। यह एक महान उक्ति है। प्रभु का आगमन संसार की गलतियों को सुधारेगा। हम धर्मशास्त्र में इस तथ्य को बार बार देखते हैं। भविष्यद्वक्ता ही नहीं, प्रभु यीशु ने भी स्पष्ट कहा है, पर्वतीय उपदेश उसके राज्य का मानदंड होगा। वह अपने राज्य में गरीब के साथ उचित एवं न्याय का व्यवहार करेगा। इससे हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 19 से 24 पद में देखते हैं। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षों तक होने का धीरज धरता है। किसान बीज बोने के बाद फसल के पकने के लिए उसकी प्रतीक्षा करता है। याकूब कहता है, धीरज रखो, फसल तैयार होने पर है। मेरे प्रियो, प्रचारक वचन का प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो हम कहते हैं विश्वासी फसल काट रहे हैं। मैं नहीं मानता। यीशु ने जब अपने शिष्यों को भेजा था तब उसके युग का अंतिम समय था। उसने अपने शिष्यों को संसार में नहीं, इसराइल की भटकी हुई भेड़ों के बीच में भेजा था। इसे हम लूका रचित सुसमाचार 10:2 में पढ़ते हैं, जहां पर उसने कहा था कि फसल तैयार है और मजदूर कम है। वह व्यवस्था के अंत का समय था। प्रत्येक युग का अंत दंड के साथ हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 में प्रभु यीशु ने कहा था कि वह फसल काटने के लिए अपने स्वर्गदूत भेजेगा। विश्वासियों को फसल काटने की आवश्यकता नहीं है, वही है जो गेहूं को जंगली झाड़ियों से अलग करेगा। अतः वचन का प्रचार करने में हम वास्तव में क्या करते हैं? प्रभु यीशु बीज बोने वाला है, वह आज भी बीज बो रहा है। मैं इसे अपना उत्तरदायित्व मानता हूं। मैं वचन की शिक्षा देता हूं, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो अच्छी भूमि पर गिरेंगे, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। हमारा काम है बीज बोना और परमेश्वर का काम है बीज को बढ़ाना। याकूब की पत्री 5:8 में लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। संपूर्ण धर्मशास्त्र में लिखा है कि हमें उसके आगमन के बोध में जीना है। तब हम आगे पढ़ते हैं याकूब 5:9 में, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। यह बड़ी ही लज्जा की बात होगी कि प्रभु यीशु के आगमन के समय आप किसी पर दोष लगाते पाए जाएं। आप उसी समय देखेंगे कि वह आपका न्याय कर रहा है। याकूब के कहने का अर्थ यहां पर यह है, अपना घर संवारो और उसके आगमन से पूर्व सब यथोचित व्यवस्थित कर लो, क्योंकि यदि आपने नहीं किया तो वह करेगा। विश्वासियों के लिए इस बात को अंतर्ग्रहण करना अति आवश्यक है। याकूब की पत्री 5:10 में वह कहता है, हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। भविष्यद्वक्ता हमारे लिए उदाहरण हैं। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए परंतु धीरजवंत रहे। याकूब 5:11 में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। उसके धीरज के विषय में हमने केवल सुना ही है। उसकी पुस्तक पढ़कर तो ऐसा लगता है कि वह बहुत अधीर था। सच तो यह है कि वह अधीर था, परंतु उसने धीरज धरना सीखा। इसीलिए वचन में लिखा है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। परमेश्वर दया, अनुकंपा और करुणा का धनी है। आपको अय्यूब की परीक्षाओं के अंत में देखना है कि उसने एक महान सबक सीखा कि परमेश्वर वास्तव में करुणा निधान एवं दयावान है। याकूब की पत्री 5:12 में हम पढ़ते हैं, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात तो यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हां की हां और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। मेरे मित्रों, जब आप कहते हैं कि आप वादा करते हैं तो यह ऐसा हो जाता है जैसा आप न्यायालय में सच कहने का वचन देते हैं। आपके वार्तालाप ऐसे ही हों। मुझे स्मरण है कि एक दिन मेरे पिता अपने उद्योग के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए गए थे, तो बैंक के कर्मी ने कहा, पैसा ले लो। मेरे पिताजी ने कहा, मैंने कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कर्मचारी ने कहा, आपने कह दिया कि आप पैसा लौटा देंगे, तो वह वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर ही है। हस्ताक्षर बाद में कर देना। मेरे कहने का अर्थ है कि मनुष्य का वचन ही ऐसा होना चाहिए जैसा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना। कुछ लोग बाइबल की कतार पर हाथ रखकर शपथ खाते हैं तो भी वचन के पक्के नहीं होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि धर्मी की प्रार्थना में सामर्थ है। याकूब की पत्री 5:13 में लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। याकूब कहता है कि कष्ट उठाने वाले प्रार्थना करें और आनंद मनाने वाले स्तुति के भजन गाएं। आराधना में कहीं कहीं पर गीतों का अगुआ कहता है, क्या सब मुस्कुराएंगे? मेरे एक कलीसिया में ऐसा ही एक अगुआ था। मैंने उससे कहा, यहां मैं बोझ से दबे हुओं को देखता हूं। एक डॉक्टर 6 दिन रोगियों की सेवा करते करते थक जाता है। एक महिला दुकान पर काम करते करते थक जाती है। आप उनसे मुस्कुराने के लिए कहते हैं। उन्हें मुस्कुराने की नहीं, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कुछ लोग आराधना में उत्साह उत्पन्न करने आते हैं। हमें तो आराधना में आने से पूर्व ही महान मनोवेग और उत्साह से पूर्ण होना चाहिए, परंतु झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। याकूब की पत्री 5:14 में आगे हम पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। एक बार एक पिता ने अपने बालक की इंसुलिन फेंक दी कि परमेश्वर उसे मधुमेह से चंगा करेगा, परंतु वह बालक मर गया। यही नहीं, वह धर्मांध कहने लगा, परमेश्वर इसे फिर से जिलाएगा क्योंकि यह अभिषिक्त है। उसकी कलीसिया के अगुओं ने कहा कि उन्हें तो ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। मुझे एक बाइबल स्कूल के शिक्षक ने कहा, मैं आपके साथ पूरे मन से सहमत हूं कि सबको चंगाई नहीं मिलती है, क्योंकि यह तो परमेश्वर की इच्छा है कि वह किसे चंगाई दे। मेरा मानना भी यही है। मेरे प्रियो, यदि आप यह मानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में सब विश्वासियों को प्रार्थना से रोग मुक्ति मिलना चाहिए, तो आपको यह भी मानना होगा कि विश्वासी नहीं मरेंगे, वह हर एक मृत्युदायक रोग से उन्हें चंगा करेगा। यह बड़ी बेतुकी सी बात है। मुझे याद है कि मेरा एक मित्र जिसे कैंसर की बीमारी थी, उसे चंगाई मिली, परंतु एक दिन उसका भी मरना निश्चित है यदि इस बीच प्रभु न आए। यह निर्बुद्धि विश्वासियों को मूर्ख बनाने वाली बात है कि परमेश्वर की इच्छा से सब विश्वासियों की रोग मुक्ति है। याकूब प्रश्न नहीं कर रहा है, वह कहता है रोगी कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करवाए, और दूसरी बात कि वे प्रभु के नाम में तेल से मलकर यानी कि उसका अभिषेक करके प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, नए नियम में अभिषेक के लिए मूल भाषा यूनानी में 2 अलग-अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। एक शब्द का अर्थ है ख्रिस्त अर्थात सुगंधित तेल या द्रव्य से अभ्यंजन करना। यह केवल 5 बार नए नियम में आया है और परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा के अभिषेक के संदर्भ में है। दूसरा शब्द अनेक बार नए नियम में आया है, मत्ती रचित सुसमाचार 6:17 में, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। ट्रेंच के अनुसार तेल मलना सांसारिक शब्द है। दूसरा शब्द ख्रिस्त पवित्र और धार्मिक है। याकूब की पुस्तक में जो शब्द है वह तेल मलना है। आपको स्मरण होगा कि हिजकिया के फोड़े पर कुछ औषधि युक्त वस्तु लगाई गई थी। याकूब बड़ी व्यवहारिक बात करता है, प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करवाएं और फिर अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। यह एक भ्रम है कि किसी के सिर पर तेल मलकर प्रार्थना करना धार्मिक अनुष्ठान है जिसके भीतर चंगाई की क्षमता है। उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है। याकूब इस विषय में अत्यधिक व्यवहारिक है। मेरे मित्रों, याकूब प्रार्थनाशील भी था। वह कहता है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए तो वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यही कारण है कि मेरे बीमार होने पर भी प्रार्थना निवेदन मैं करता हूं ताकि विश्वासी मेरे लिए भी प्रार्थना करें। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 15 और 16 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आपको बीमारी के समय विश्वासियों से प्रार्थना करवानी चाहिए। तब लिखा है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के समक्ष अपने पाप स्वीकार करने हैं, परंतु अपने अपराध एक दूसरे के सामने स्वीकार करने होंगे। यदि मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे आपसे क्षमा मांगनी होगी, परंतु अपने पाप मैं आपके सामने उजागर नहीं करूंगा और न ही आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपने पाप मेरे सामने कहें। यूहन्ना कहता है, 1 पत्री 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पाप क्षमा करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, चाहे वह कलीसिया का पास्टर या पादरी ही क्यों ना हो। पाप क्षमा करना परमेश्वर का काम है। आगे वह कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब प्रार्थना करने वाला एक महान मनुष्य था। उसे बूढ़े ऊंट के घुटने कहा जाता था क्योंकि वह बहुत समय घुटनों पर प्रार्थना करता था। उसके घुटनों पर गांठें पड़ गई थी। अब वह एलिया के प्रार्थनाशील जीवन का उदाहरण देता है। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 17 और 18 पद में वह कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। कल्पना कीजिए, एलिया मौसम बता सकता था। उसने 3.5 वर्ष वर्षा रोक दी। उसकी प्रार्थना के बिना वर्षा नहीं हुई। आप भी एलिया के समान ही हैं। एलिया महामानव नहीं था, वह भी आपके समान मेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, परंतु वह जी जान से प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, हमें भी ऐसी ही प्रार्थना करनी है। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 19 और 20 पद में, जो इस पुस्तक का अंतिम पद है, लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। लिखा है, वह यह जान ले कि जो कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। कुछ टीकाकारों का मानना है कि यह परमेश्वर की भटकी हुई संतान के बारे में है। मेरे विचार में यह एक अविश्वासी के बारे में है जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है। आगे हम देखते हैं कि अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। जब वह प्रभु यीशु के उद्धारक ज्ञान को पा लेगा, तब उसके पाप चाहे अनेक हो, उन पर प्रभु यीशु के लहू का पर्दा पड़ जाएगा। विश्वास द्वारा उद्धार पाने का अद्भुत न्याय यही है कि परमेश्वर आपके पाप क्षमा कर देता है, तो वे सदा के लिए पूरब से पश्चिम जितनी दूर है हमसे भी दूर हो जाती है। मेरे प्रियो, याकूब के इस व्यवहारिक पत्र का यह अति अद्भुत उपसंहार है, और इसी के साथ यहां पर याकूब की पत्री का अध्ययन भी समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूं कि इस पत्री के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है, तो कृपया अपनी गवाही और अपनी आशीषें हमें लिख करके बताएं कि आपने इस पुस्तक के द्वारा क्या सीखा, ताकि हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर को धन्य कहने पाए। अगले अध्ययन में हम एक नई पुस्तक के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, इसलिए कृपया आप अवश्य ही परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए अपने आप को और दूसरों को भी तैयार करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए से मिला।